सतसंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इटावा शहर में आके आप सबके दर्शन करके जहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, वहीं आज सुबह से यात्रा ये जो आगरा से शुरू हुई और उससे पहले अलीगढ़ और एक दो स्टेशन और भी करने को मिले, तो हर जगह जहाँ पे भी सत्संग करने को मिला वहाँ यही एक जो चीज़ है, जो कहीं पे भी जाएं सत्संग के अंदर अगर हम होते हैं तो वो यही रहती है कि ये जो भक्ति का भाव है, ये जो मन में हमारे निरंकार प्रभु परमात्मा, इससे एक नाता जोड़ने की बात है। तो वो पहलू अपना मजबूत करने के लिए ही सत्संग का सहारा लेते हुए हम अपने जीवन को बिताते हैं, और साथ ही ये सेवा भावना मन में रखते हुए कि जो भी इस संसार में है वो हमसे श्रेष्ठ है और हमने उसमें परमात्मा का ही अंश देखना है, तो उसी के लिए हमने ये जो सेवा करनी है, हमारे शरीर से हमारे मन में वो सेवा भाव आए, और हमने आर्थिक रूप में भी अगर ये करनी है धन की सेवा भी, और वहीं साथ साथ सुमिरन की बात आती है कि अपने मन में हम जब भी निरंकार प्रभु का एहसास करते हुए अपनी सारी गलतियों को बख्शवा कर ये सिमरन रूप में अपने मन का बर्तन साफ करते जाएं, ताकि इसमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जो दांत है जिसके बिना हमारा ये जिंदगी अधूरी है, वो सफल नहीं होती, वो ब्रह्म ज्ञान टिक पाए। तो कैसे हमने पल पल अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं वो यही सोचते हुए करने हैं कि हमारी से वही कर्म होएं जो हमारे लिए भी ये लाभ दे, हमारे जीवन के पल पल को निखारें, इस परमात्मा के एहसास में रहते हुए हमारा जीवन बीते, और साथ ही हम ये समाज के लिए, संसार के लिए भी फ़ायदे का काम करें और कोई हानि ना पहुंचाएं, हम औरों के आंसू पोंछने के काम आएं, उनको एक आंसू देने के ना आएं। तो कैसे हमने ये सारे मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारना है, हमें कैसे अपने मन को विशाल बनाना है कि कोई हमसे अगर कोई बात करता भी है जो हमारे को अच्छी नहीं लगती, या हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति का ये बोलने का तरीका ठीक नहीं था या शब्द अच्छे नहीं बोले, तो उसको भी हमने उसी तरह माफ़ करना है, ना कि हमने ये सोचना है कि उसने मुझे अगर दो कड़वे वचन बोले हैं तो आगे से मेरे को तो चार बोलने हैं। ऐसा नहीं, हमारे लिए ये अगर मनुर्भव वाली बात है कि अगर हमें मनुष्य बोलने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तन तो हमारा मनुष्य का ही है, तो फिर क्यों मनुष्य बनने के लिए ये आवाज़ आती है? वो इसीलिए कि हम मनुष्य तभी तक हैं जब तक ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, और कैसे हमने पल पल में अपने एक कैरेक्टर को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बेहतर करना है। तो वो बेहतरी तभी हमारी मुमकिन है जब हम ये एहसास करेंगे कि ये जीवन हमने, जो ये सांसें हमारी परमात्मा ने हमें दी हैं, उन सांसों को हमने बिताना है तो सुंदर ढंग से बिताना है, हमें अपने आप को उस तरह उपयोग में लाना है कि सिर्फ हम हर एक का उसमें भला ही करें, अपना भी औरों का भी। तो आज यहाँ इटावा शहर में ये जिस तरह आप सत्संग इतनी शांतमय भाव में कर रहे हैं, ये बहुत ही सुखदायी पल है। हमने 3 घंटों से पिछले यही श्रवण किया, जो भी वक्ता बोले, चाहे वो कविता रूप में बोले, गीत रूप में, स्पीच रूप में, कोई भी भाषा का उन्होंने सहारा लिया, तो उन्होंने पहलू हमारे जीवन के वही निखारे कि किस तरह ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, और कैसे हम इस जिंदगी रहते रहते, जीवन जीते जीते ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इस परमात्मा को देखा जा सकता है, और कैसे ही हम अपने जीवन में जब ये परमात्मा को लेकर आते हैं, ये एहसास में लगते हैं, तो कैसे हम सिर्फ ये अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत ही नहीं करते जाते, बल्कि जब ये हमारी मृत्यु का समय होगा, ये आंखें बंद होंगी, तो भी वो एक उसके बाद की भी जो बोलते हैं यात्रा, वो उस अपनी पहचान जब हमने कर ली तो हमें कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और किस में रह कर ये जीवन बिता रहे हैं, ये सारे सवाल हमारे, ये खुद ब खुद हमें इसका जवाब ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही मिल सकता है। तो आज ये हम सब अपने आप की पहचान इस तरह करें कि आत्मा का जो पहचान है वो परमात्मा है। तो अभी जैसे हम इस हरदेव वाणी के शब्द को भी सुन रहे थे तो उसी पे ही, हाँ जी,
जिस मन में निरंकार बसा है वो मन मंजिल पाएगा,
कि ये मन की अवस्था की बात हो रही है कि एक बार जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये हमें रमे राम का पता चल जाता है, ये कैसे कि हमारा जो एक परमात्मा के रूप में हमें ये जो सौगात का एहसास है उसको हमने अपने मन में बसाना है, तो पहले अपने मन से हमें सारी ये द्वेष भावनाओं को हटाना है। अपने मन में जब ये निरंकार को हम टिका पाएंगे, तो निरंकार को जब बसा पाएंगे तो ही हमारा जीवन आगे सुखदायी हो पाएगा। और ये हम अपने मन में इस रूप में हम अपनी ज़िंदगी को जीते जाएं कि ये निरंकार का जो एहसास, ये जो भक्ति में रहकर ये जो विश्वास की बात आती है, जितना हमारा मन स्थिर रहेगा, साफ रहेगा, उतना ही हमारा ये मन के बर्तन में वो निरंकार का प्रभु परमात्मा को हम टिका पाएंगे। और ऐसे ही हमने अपने जीवन को आगे चलाते जाना है। हाँ जी,
जिस मन में संसार बसा है वो मन ठोकर खाएगा।
तो अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो जहाँ मन में निरंकार बस गया तो जीवन कितना सुखमय हो गया, और अगर दूसरी तरफ बात ये की जाती है कि अब मन तो वही एक है, हमारे पास ये चॉइस है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसमें क्या रखना चाहते हैं। ये संसार तो डामाडोल करता है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, इस संसार में तो सिर्फ हमें कोई स्थिरता भी नहीं दिखेगी, हर तरफ हर मिनट हमें एक उथल पुथल, एक बेचैनी जहाँ मिल रही है। तो कैसे जीना तो उसी संसार में है, पर कैसे उस संसार का हम असर ना ग्रहण करें, हम कैसे ये माया रूप का अंधकार अपने मन में इतना ना ले लें कि हमें कुछ दिखाई ना दे और ठोकर ही मिले, और उस तरह हम अपने आप को एक बार बार उस दलदल में माया रूप की ये संसार के अपने आप को गिराते रहें। तो जो ये स्थिर है सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है, इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे, ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। तो ऐसे ही ये बात जहाँ संसार की है कि कुछ भी हो, अगर मन में निरंकार है तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर जी सकते हैं। और अगर इस भौतिक दुनिया में ये रंग ही भौतिकता का ले लें और सिर्फ यही माने कि ये जीवन सिर्फ हमारा इसी मकसद के लिए है कि हमने एजुकेशन ले ली, पढ़ाई लिखाई करके, काम काज करके, अपने इस परिवार के अंदर जहाँ रहना तो है ही, पर सिर्फ उसी को ही ये ना माने कि ज़िंदगी मिली है तो यही करने के लिए है। ज़िंदगी में ये सब हमें करना ज़रूर है, पर उससे ऊपर एक स्पिरिचुअल क्लैरिटी की बात जो आती है, एक स्पिरिचुअलिटी में हमें अपने आप की पहचान करने वाली बात, जो हम किस में रह रहे हैं, किस में खा रहे हैं, किस में कार्य कर रहे हैं, जब तक ये परमात्मा का हमारे को बोध नहीं, तब तक फिर हम ये दुनिया के उसी रंग में रंगे रहेंगे जो कि हमें एक पतन की ओर, हमारा एक हमको उस तरह से प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाता। तो हमें ये याद रखते हुए कि निरंकार ही है जो हमारा पार उतारा कर सकता है। हाँ जी,
किश्ती पानी में रहती तो मिलता उसे किनारा है।
तो ये उदाहरण एक किश्ती का यहाँ पे आया है कि कैसे हमें अगर एक पार से दूसरे पार में जाना है और किश्ती का सहारा ले रहे हैं, तो उसी तरह ये किश्ती के नीचे जब पानी होता है तो हमें एक मन में सुकून है कि हमारी किश्ती अब एक छोर से दूसरी छोर जा रही है। ये जीवन जो हमारा है, इसमें हमें अगर ये बात होती है कि पैदा जब से हुए और मृत्यु जब तक है, उसके बीच का जो जीवन काल है, ये इसमें हम अगर यही माने कि ये पानी ये निरंकार का रूप लें, और जब हम अगर उसके ऊपर अपनी किश्ती को रख रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो हमें वो भरोसा है कि परमात्मा का हमारे ऊपर वो आशीर्वाद कहें, वो हम अपना फेथ कहें, एक हम अपना जो भी भक्ति भाव में उसको कहें, कि वो हमारी लगन उस तरह लगी है, हमें पता है कि ये हमारा जो पार उतारा है वो होगा ही होगा। जो जीवन जी रहे हैं वो सुंदर तो बीतेगा ही, और उसके बाद जब हम दूसरे छोर में पहुंच जाएंगे तो भी ये हमारा, उसके आगे भी ये जो मोक्ष की बात आती है, ये सेल्वेशन की बात आती है, तो वो भी निश्चित तभी हो पाता है जब ये ब्रह्म ज्ञान को टिकाते हैं मन में और उसको याद रखते हुए जीवन को काटते हैं। जैसे इसी उदाहरण में बात यही है कि अगर हम पानी को और किश्ती को पानी में चला रहे होते हैं, तो कैसे चाहे आंधी भी आती है, चाहे लहरें ऊंची भी उठती हैं, तो भी हमारे पास एक वो डायरेक्शन रूप में हम अपनी किश्ती के चाहे सेल्स को एडजस्ट करें, या फिर हम अपने चप्पू को उस तरह से घुमाने लगते हैं कि उसके संसार के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे पास आया है संसार में, एक मौका, एक कोई कार्य, एक वो ऐसा स्थिति बन गई है, वो चाहे फिर कितनी भी उथल पुथल की हो, हम उसको काटते हुए, हम उससे उभरते हुए ऐसे उस पार चले जाएंगे। हाँ जी,
किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है।
और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया, और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है। फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई निचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं, या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस जिंदगी का, कश्ती रूपी जिंदगी का हमें नहीं पता, अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो किश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी, और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात कि किस तरह हम परमात्मा का सहारा किस एक वो सीरियसनेस के साथ ले रहे हैं, कैसे पल पल में ले रहे हैं, तो ही ये कश्ती हमारी भव सागर से पार होगी। हाँ जी,
चाह अगर है भव सागर से जीवन नहीं आ पार हो,
तो कैसे इसी तरह हमारे मन में जो चाहत रहती है कि कैसे हमारा भव सागर से अगर ये ही नैया, जो ये जीवन रूपी नैया ने पार होना है, तो वो जो चाह अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन तो युगों युगों से ये संत देते ही आ रहे हैं। आज भी जैसे सत्संग में भी संतों ने ये आवाज़ लगाई, और उससे पहले भी जाएं अगर हम, युगों युगों से एक यही बोला जा रहा है कि अगर हम ये परमात्मा को अपने अंग संग देख पाएँ, अगर ये हमारे अंदर रमस समझ के हम उसको बसा लें, तो ही हमारा पार उतारा हो सकता है। तो ये जो बात है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में युगों युगों से संत, वो चाहे किसी भी टाइम रहे हों, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, या अभी कलयुग में भी, तो बात वही है कि कैसे हम अपने इस जीवन में ये परमात्मा को ला सकते हैं। ये अंगसंग है पर इसको देखा भी जा सकता है, और देखकर जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और सिर्फ एक बारी के लिए नहीं, ये तमाम उम्र ये एहसास को आगे बढ़ाते रहें। तो सोल्यूशन यही दिया है संतों ने कि कैसे एक भक्ति भय जीवन में हम जब परमात्मा को डालते हैं तो भक्ति उसी समय पे शुरू होती है। हाँ जी,
रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो,
तो कैसे संसार अगर हमारे मन में आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो अभी जिक्र हुआ है जिनका, कि किस तरह अगर मन में आ गया तो हमारा एक वो पतन की जहाँ बात आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अब संसार से उठ के कोई एक संसार से अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक परिवार से अलग हो के एक भक्ति निभाने वाली बात करें। नहीं, रहना वही है, इस समाज में ही रहना है, घर परिवार में ही रहना है, और एक उसमें रहकर घर परिवार के अंदर रह के ही भक्ति को हमने अपनी कायम रखना है। संसार से मुँह नहीं मोड़ना, पर संसार में विचरित होते हुए भी उस तरह संसार का प्रभाव नहीं लेना है। हर तर जगह में जहाँ एक अगर ऐसी बात हो कि हमें अगर गंदगी दिख रही है, तो ये ना हम कहें कि हम अपने ऊपर भी गंदगी ही लेप लगा लें, पर हम वो गंदगी को देखते हुए वो एक झाड़ू की माफिन एक उसको परे कर दें, और एक वो गंदगी जहाँ नज़र आ रही है चाहे हमारे संसार में, उसको भी हम कैसे अपने योगदान से साफ बना दें। हाँ जी,
जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है,
और यहाँ वो कमल के फूल की एक भांति जो बात आ गई कि कैसे वो तो कीचड़ में ही उसका जन्म और मरण होना है, ऐसे ही संसार में अगर बहुत गंदगी भी कहीं नज़र आ रही है, वहाँ हम भी वो कमल के फूल की तरह ही रहें कि उसने भी वो गंदगी को ग्रहण नहीं किया, उस गंदगी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रखा, बल्कि इतनी गंदगी में भी उसने वो अपनी खुशबू दी, अपनी सुंदरता को कायम रखा। कि कैसे वो बात नहीं कि अगर आसपास वाले सब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है, नहीं, हम अगर देख भी रहे हैं कोई गलत कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो हमें उसके जैसे नहीं बन जाना। हमें फिर यही सोचना है कि हम कैसे उस कमल के फूल की तरह उस कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ का असर ना लें, बस अपने आप के सुधार, अपनी आप की खूबसूरती के ऊपर ही ध्यान लगाएं। हाँ जी,
कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है।
तो अब ये जो जीवन है हमारा कैसे सफल होगा, कि कैसे हमने जब अपने जीवन को ये कमल के फूल की तरह, ये कश्ती के एग्जाम्पल भी जो अभी दिए गए, या कुछ भी और हम अपने आप सोचकर अगर देखें कि जीवन में पल पल हमारे लिए हर टाइम अगर कोई परेशानी है, तो वो परेशानी ने दूर कैसे होना है? वो स्थिति तो चेंज नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ है, हम उसके लिए डॉक्टर पे हो आते हैं, अगर दवाई असर करे तो आराम आ भी जाता है, नहीं आए तो भी हम उसमें इस परमात्मा को कोसे नहीं, वो अगर परमात्मा ने स्थिति हमारे लिए बनाई है, वो अगर घर में काफ़ी महापुरुष आके कहते हैं संतान नहीं हो रही या कुछ ऐसी बात, तो उसमें भी ये निरंकार का रजा समझें कि कैसे हमारी स्थिति कोई भी हो, परमात्मा ने तो हमेशा भला ही करना है हमारा, तो हम उसमें दुखी ना हो जाएं, बस उसमें भी ये शुक्राना करते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसे एक खूबसूरती में ढालें। इस जो सत्वचन की बात होती है, जो एक की जो भी हमारी स्थिति परमात्मा ने हमारे को बना कर दी है, उसमें हमने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, और कोई हमने कंप्लेन नहीं करनी, कोई एक हमने शिकवा नहीं करना। तो अगर हम अपने जीवन को ऐसे ही बिता पाएंगे तो ही वो जीवन असली मायने में जीवन जिया गया है। तो अंत में यही शुभकामना कि इधर आके जहाँ आप सब संतों ने ये समय सत्संग में बिताया, तो वो सारा समय आप सबको मुबारक है। और कैसे हमने अब आज जो जो भी सत्संग में सुना उसको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारें, तो और कुछ ना कहते हुए दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संग जी, धन निरंकार जी।